ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज भट्टी का प्रथम दिन है और सबको स्वमान याद होगा, आत्मा अनुभूति दिवस है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, उस स्वरूप में सभी स्थित हुए होंगे। वाइब्रेशन आ रहे हैं वो पवित्रता के। आज भट्टी का प्रथम सत्र शुरुआत हो रहा है हमारे डॉक्टर सविता दीदी के माध्यम से। आपका आज का टॉपिक है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी। आप सभी ने जो सुना, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है, आज हट के बताया जा रहा है। संतुष्टता, प्रॉपर्टी, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता, प्रॉपर्टी है ना, संतुष्टता। उस पर आज प्रकाश डालेंगी डॉक्टर सविता दीदी। आपका शॉर्ट में मैं परिचय देना चाहूंगी, उनके नाम में ही उनका परिचय समाया हुआ है। वे बहुत ही सौम्य स्वभाव की, मधुर वाणी की धनी हैं। बहुत ही प्रेम से आप सभी को सुनाएंगी। वे डबल डॉक्टर हैं, रूहानी जिस्मानी डॉक्टर। एक डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर की पेशी शुरू हो जाती है। डॉक्टर बनने के लिए बड़े प्रयास से वो डिग्री हासिल करते हैं, सीट हासिल करते हैं। परंतु हमारी सविता दीदी की अपने पढ़ाई के समय से ही इस विद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जुड़ गई। जुड़ते हुए उन्होंने दोनों स्टडी किया, करने के बाद अपने जीवन को इस कार्य में लगाने का लक्ष्य लिया। तो आप सबसे पहले हमारे बड़ी दादी जी की डॉक्टर बन के सेवा में रही, ये बहुत ही परम सौभाग्य आपको मिला। वो डिग्री हासिल करते ही कि इतनी ऊंची संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाश मणि जी की डॉक्टर बन करके उनके साथ अंग संग रहने का बहुत ही अच्छा आपका अनुभव है। रूहानी जिस्मानी डॉक्टर बनके वो नाम के लिए डॉक्टर, वो काम नेक्स्ट फर्स्ट रूहानी, आत्मा को क्योर करें ताकि शरीर ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएगा, इस तरह से। और आप मधुबन में ही सेवारत हैं, देश विदेश की सेवाएं, अनेक सब्जेक्ट्स पर बाबा की, बाबा का संदेश देने का कार्य करती हैं। आज हम आपसे ही सुनेंगे। आदरणीय सविता दीदी,
ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन आप सब उसमें पास हो गए हाँ, क्योंकि ऐसे समझा था कि युद्ध के माहौल में शायद भाई बहने हाँ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाबा से आपका प्यार और अटूट निश्चय आपको मधुबन की भट्टी में ले आया। मैं समझती हूँ कि किन्हीं को तो पहली बार चांस मिला होगा, जो पहली बार यहाँ पांडव भवन में भट्टी कर रहे हैं वो हाथ उठाएं, मैच्योरिटी, तो फिर ये चांस मिस हो जाता। तो हमारा विषय ही है आज, कोई भी परिस्थिति हो क्या रहना है, संतुष्ट। तो ये विशेषता है आध्यात्मिक जीवन की, आध्यात्म की निशानी ही है। अगर ये निशानी नहीं है तो मानो उसने कोई गुण पाया ही नहीं। बाबा कहता है ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी तो बताया, और ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, सर्व गुणों का राजा है, संतुष्टता। भक्ति में भी कहते हैं गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो वहां तो ऐसे समझते हैं कि सब कुछ त्याग, माना जो उनका वैराग्य होता है वो स्थूल सब बातों का त्याग करके बस एक भगवान की याद में ही संतुष्ट रहना है। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें संतुष्टता बताते हैं, संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। और सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी हुई है, हम कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले उस परमेश्वर की, वो ही मिल गया तो सारा संसार किसमें समाया है, उसमें बाबा में समाया है। तो बाबा कहते हैं आपको इतनी बेहद की प्राप्ति हुई है कि आपके जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए उनके सतयुग में प्रजा और उनके भी वंशावली, फिर द्वापर युग में जो भक्त बना रहे हो वो भक्त और भक्तों की भी वंशावली, उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे क्योंकि हम पूर्वज है ना विश्व की आत्माओं के। हाँ, तो लौकिक में भी तो देखते हैं ना कौन पालते हैं सबको, पूर्वज ही पाल रहे होते हैं। तो इतनी बेहद की प्राप्ति है लेकिन फिर भी असंतुष्ट हो जाते हैं। कौन समझते हैं हम सदा संतुष्ट रहते हैं, कभी मन में असंतुष्टता नहीं आती किसी व्यक्ति को या कोई भी ऐसी प्राप्ति है जो संसारिक प्राप्तियां हैं ना उनको लेके भी तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तो कौन ऐसा समझते हैं कि हम सदा संतुष्ट रहते हैं, जब से बाबा के बने कोई असंतुष्टता मन में आती ही नहीं। यस यस, बहुत अच्छा, अच्छी उपलब्धि है जो हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो कम से कम 7-8 लोगों ने हाथ उठाया तो अपने लिए इनके लिए ताली बजाओ। तो क्यों हम असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी असंतुष्ट हो जाते हैं ना। तो क्यों हम असंतुष्ट हो जाते हैं, बाबा कहता है जो प्राप्तियां हैं उनको भूल जाते हैं, विस्मृति में आ जाते हैं। अगर इनके स्मृति स्वरूप रहो, क्योंकि हद की प्राप्ति में बुद्धि चली जाती, बेहद की प्राप्ति भूल जाती है। बाबा ने क्या संपत्ति दिया, क्या खजाने दिए, तो बेहद की प्राप्ति से जब हद की प्राप्ति में आ जाते हैं, हद की प्राप्तियां जानते हैं ना, हाँ, इस संसार की जो भी प्राप्तियां हैं उनके पीछे जब जाते हैं तो फिर असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो सब इच्छाएं हमारी पूरी हों ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ बाबा कहता है आप बच्चों को जो सर्व प्राप्ति है उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह की प्राप्तियां हैं। स्थूल प्राप्तियां क्या मानी जाती हैं जीवन में, स्थूल प्राप्तियां हैं संपत्ति हो, सेहत हो यानी तंदुरुस्ती हो, और संबंध, हमारे संबंध अच्छे हों, और इन तीनों से ही लोग असंतुष्ट होते हैं। तो हमारी तंदुरुस्ती कैसी है, हमको तंदुरुस्ती मिली है, आत्मा की तंदुरुस्ती सदा ही है। तन की तंदुरुस्ती का बाबा ने वायदा नहीं किया क्योंकि तन की तंदुरुस्ती का हिसाब किताब तो हमें चुकतू करना है। तो हरेक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी होती है, लेकिन वो बीमारी होते हुए भी मन पर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने क्या विधि बताई है, बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है, क्या बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। अगर हम बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दुनिया में लोगों का क्या होता है, छोटी सी भी कोई बीमारी हो गई तो सोच सोच के बीमारी को बड़ा बना देंगे, ये हो गया वो हो गया क्या करेंगे क्या होगा कैसे होगा। तो अगर हम भी इतना ही सोचते हैं बीमारी के बारे में तो फिर हम भी अपनी बीमारी को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर बीमारी है, बीमारी होते हुए भी हम स्वस्थ समझते अपने आप को, तो बीमारी का रूप भी सूली से कांटा हो जाता है, उसका दर्द भी हमको फील नहीं होता है और सबके अपने जीवन में अनुभव है। हाँ, जितना आप बीमारी को ज्यादा सोचेंगे उतना बीमारी से ज्यादा कष्ट होगा, और जितना आप उसको चलाएंगे, है ना। दादी जी ना, दादी जानकी जी थी, वो उन्होंने बाबा से एक बार कहा, बाबा आप मुझे बहुत अच्छा चलाते हो, क्योंकि दादी तो हमारी फेमस थी ना, अपने विल पावर से कैसे शरीर को चलाती थी ना, कितनी बार दादी ऐसे बीमार हुई लेकिन एन मोमेंट पे दादी उठ के सेवा पर। कोई सोच भी नहीं सकता कि दादी कल बेड पर है और आज सेवा पर है। तो बाबा ने कहा आप चल रही हो इसलिए चलाता हूँ। तो किसको हिम्मत रखनी होती है, तो जितना हम हिम्मत रखते हैं उतना ही हमें बीमारी कभी भी फील नहीं होती है। और फिर बाबा कहता है दवा और दुआ। बाबा ने कलयुग में, अब कलयुग का समय है तो तमो प्रधान तत्वों से हमारा बना हुआ शरीर है, तो कितना भी हम योग लगा लें, वैसे तो योग बल से आयु बढ़ती है ये बाबा ने हमें कहा है, लेकिन फिर भी तत्व तो वही पुराने हैं ना, तो फिर दवाई की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे भी बाबा ने मना नहीं किया कि हमें कोई डॉक्टर को नहीं दिखाना या हमें कोई दवाई नहीं करनी है, लेकिन जितना हम सोल कॉन्शियस रहते हैं उतना बाबा की हमें दुआ मिलती है और प्लस दवा। फिर जो भी पैथी की दवा आप करना चाहो, कलयुग में कितनी पैथियां निकली हुई हैं, और बाबा कहता है जो एलोपैथिक की गोलियां होती हैं वो तो रंग बिरंगी होती हैं, तो वो तो कलयुग के ड्राई फ्रूट्स हैं, तो क्या समझकर खाना है। हाँ, ये नहीं समझना हम दवाई खा रहे हैं, क्योंकि दवाई समझकर खाएंगे भारी होकर खाएंगे, अरे कितनी गोलियां खानी पड़ रही हैं, पता नहीं ये शरीर में कितनी गर्मी कर देगी, पता नहीं ये शरीर को कितना नुकसान। लोग कैसे खाते हैं दवाई, कैसे खाते हैं, भारी हो के खाते हैं, तो वो दवाई उतना काम करेगी नहीं। अगर ये समझकर खाएंगे कि ड्राई फ्रूट खा रहे हैं और ये दवाई यही मुझे स्वस्थ बनाने वाली है, ये तो मेरे अंदर ताकत देने वाली है, तो उसमें भी पॉजिटिव वाइब्रेशन भर जाएगा और वो डबल काम करेगी, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दवाई खाने की भी विधि है, जैसे हम भोजन को वाइब्रेशन देते हैं तो भोजन बदल जाता है, तो दवाई को भी ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएंगे। जो भी डॉक्टर ने दवाई लिखी अगर आपको खानी है बीमारी के अनुसार तो खुशी से खाओ, और अगर नहीं खानी है तो दूसरी पैथीज भी बहुत हैं, जाओ नेचुरोपैथी में जाओ या आयुर्वेदिक में जाओ, है ना, और भी एक्यूप्रेशर में जाओ, कौन सी भी पैथी आपको जो सूट होती है होम्योपैथिक, वो सब जाकर के हम दूसरा इलाज करें। लेकिन बाबा ने इसीलिए ये सारे इन्वेंशंस कराए हैं ताकि हमारे तन के हिसाब किताब भी हम जल्दी चुकतु कर लें। तो इस तंदुरुस्ती को लेकर के भी हमें असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं, अरे मैं तो बीमार हो गई, मेरी कमर, मेरे घुटने या जो भी, अब शरीर चलता नहीं, अब मैं कैसे सेवा करूंगी, अब मैं क्या करूंगी। बाबा कहते शरीर बीमार है तो भी आप सेवा कर सकते हो, कर सकते हो कैसे। तो मनसा सेवा तो बिस्तर पर भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे तो दादियों के बड़े मिसाल है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारा मन स्वस्थ होगा तभी मनसा सेवा कर पाएंगे। अगर मन बीमारी से अस्वस्थ है तो फिर बाबा ने कहा 50-50 ब्राह्मण होते हैं, 50% ब्राह्मणों की विजय होती है, बीमारी पर विजय होती है, उनके चेहरे से कभी नहीं दिखेगा कि ये बीमार है, कितनी ही गंभीर बीमारी क्यों ना हो चेहरा सदा खुशनुमा। तो हम बीमारी में भी सेवा करते हैं, लेकिन 50% ब्राह्मण, बीमारी कुछ भी नहीं है लेकिन उसका वर्णन करेंगे बहानेबाजी। बाबा कहते कई बीमारियों का तो थर्मामीटर ही नहीं होता, आप कोई कह रहा है मेरे कमर में दर्द है उसका क्या थर्मामीटर है, कोई कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, अब उसको छुटकारा पाना है किसी भी चीज से, तो जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए ऐसे बहाने करते हैं ना, तो यहाँ भी अगर सेवाओं के लिए अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे मन पसंद नहीं है तो फिर वो छोटी भी बीमारी होगी उसको, और इस तरह से बताएंगे उसको। तो कई भी ब्राह्मण जो है वो मन से बीमार होते हैं, तन से इतने बीमार नहीं होते, लेकिन मन में कोई बात की फीलिंग है, सेंसिटिव नेचर है तो फिर इस तरह से वो अपने को फिर असंतुष्ट कर लेते हैं। फिर जो संपत्ति की बात है तो हमारे लिए कौन सी संपत्ति मूल्यवान है? दुनिया में तो धन कमाओ खूब, उसमें संतुष्ट होते हैं। कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा कमा लो, है ना, ये जिंदगी है लोगों की। और वो कमी होती है तो उसमें असंतुष्टि आती है, अरे मेरे जो ये हैं इनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई, अभी मेरे पास क्यों नहीं। सारी भागदौड़ किसकी लगी हुई है? और हम ब्राह्मण इससे असंतुष्ट होते हैं। बाबा कहता है मैं तो गरीब निवास हूँ, मेरे सब बच्चे कौन हैं? हाँ, अगर हम साहूकार होते तो यहाँ बैठे होते? साहूकारों के पीछे तो माया होती है। तो बाबा कहता है कभी भी अपने को गरीब नहीं समझना, क्योंकि हमको अविनाशी संपत्ति मिली है, अविनाशी धन मिला है। उस विनाशी धन के पीछे गए तो जितना हमें चाहिए, बाबा ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है। कमी है किसी को? पेट को दो रोटी चाहिए, खाने को एक खाने को दो रोटी चाहिए, सोने को एक बिस्तर चाहिए, माना रहने को एक घर चाहिए, वो सब कुछ है ना सबके पास, कोई कमी है? तो फिर इसीलिए बाबा कहता है कि इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रीड्स। किसी के लालच पूरी करने के लिए बाबा बंधा हुआ नहीं है। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, है ना, कैसे गलत और सही की बात है ना, वो चोरी की बात जो बाबा ने कही, तो इसीलिए उसके पीछे हमें नहीं जाना है। कई सोचते हैं बहुत धन होगा ना तो हम बहुत सेवा करेंगे, तो बहुत सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं गलत तरीके से धन आएगा तो वो बाबा की सेवा में नहीं लगेगा, वो ऐसे ही इधर उधर वेस्ट हो जाएगा। तो बाबा की सेवा में वो ही धन लगता है जो हमने सच्चाई और ईमानदारी से कमाया है, क्योंकि वो सच्चे दिल वाला बाबा है। फिर बाबा कहता है अच्छा चलो, मानो आप सूखी रोटी खाते हो, हमारे पास उतना ही है, हम सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन वो सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन महसूस होती है, क्योंकि उसमें खुशी की खुराक भरी हुई है। क्योंकि हम क्या खा रहे हैं? ईश्वरीय याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, जो किसी को भी नसीब नहीं होता है। फिर सोचते नहीं, एक अच्छा बड़ा घर तो होना चाहिए, एक कार होनी चाहिए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपको कार तो क्या, कारों का खजाना मिल गया है। हाँ, ये संपत्ति अभी भी नहीं और आगे, आज भी बाबा ने कहा ना, कितने जन्मों तक चलने वाली ऐसी कमाई। आप संगम युग में ही कमाते हो और दुनिया में कोई पढ़ाई आपको ऐसी कमाई करवा ही नहीं सकती जो अभी आपकी कमाई हो रही है। तो इसीलिए विनाशी कमाई के पीछे नहीं, हमारी कमाई जो अविनाशी कमाई है, अविनाशी धन है। और ज्ञान धन प्रकृति को वैसे भी दासी बना देता है, जितना हमारा ज्ञान धन बढ़ता जाता है उतना स्थूल धन भी उसके पीछे पीछे देखते हैं ना हम। आज बाबा ने शुरू में कहलवाया था, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कितना पैसा था? सिर्फ बाबा ने अपनी संपत्ति समर्पित की और दो चार परिवार और समर्पित हुए सब मिलाकर के। और बाबा कहता है जो आदि सो अंत होने वाला है, लास्ट में भी क्या प्रसिद्ध होगा? क्योंकि क्यों प्रसिद्ध होगा? क्योंकि लोगों के जीवन में तो कई ऐसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी वो हमारे पास साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया के साथ होगा तो हमारे साथ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं तो हमारे चेहरे उसमें भी चमकते रहेंगे, उसमें भी हम खुशी में रहेंगे। तो लोगों को लगेगा क्या है इनके पास ऐसा, कौन सी संपत्ति है। तो इसीलिए तब वो भी अंत में भी यही लहर आएगी कि ये ब्रह्मा कुमारी जो है वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो उस संपत्ति को हमें कमाना है, इस स्थूल संपत्ति के पीछे नहीं। और ये इच्छाएं तो ऐसी हैं, एक पूरी होगी तो 10 शुरू हो जाएंगी। बाबा कहते हैं परछाई के समान है, आप परछाई के पीछे कितना भी जाओगे पकड़ सकते हो, लेकिन परछाई को अपने पीछे लाने का तरीका क्या है? सूर्य के सामने, रोशनी के सामने हो जाओ।
रोशनी के सामने होते ही परछाई अपने आप पीछे आने लगेगी। तो हमारे लिए ज्ञान सूर्य कौन है?
शिव बाबा है।
शिव बाबा से योग लगा रहेगा, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं, आपका संकल्प होगा ना उससे पहले चीज हाजिर हो जाएगी। किसको अनुभव है कि हम सोचते बाद में बाबा पहले पूरा कर देता है लोग मेजोरिटी, फिर क्या चाहिए, फिर तो चाहिए चाहिए खत्म। मुझे चाहिए ही नहीं ना, तो किस जो बाबा ने हमें राज बता दिया उस राज को समझकर हम चलेंगे तो ये दुनिया की जो इच्छाएं हैं वो अपने हद की प्राप्ति वाली जो बात है ना, तो जो बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाबा है, जो कहा भगवान में सब कुछ समाया है, संपत्ति बाबा कहते हैं ना व्यक्ति और वैभव, क्यों संसार कहते हैं, बाबा में ही संसार है, व्यक्ति और वैभव उसमें ही समाये हैं। तो मेरी बुद्धि बाबा से लगी हुई है तो मुझे अपने आप ही सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी, मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे माता पिता बच्चों की सब प्राप्तियां या सब इच्छाएं अपने आप पूरी करते हैं, तो बाबा भी तो हमारा माता पिता है। फिर तीसरा जो है संबंध, तो संबंधों में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यही चैलेंज है, क्योंकि हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है ना, देवी परिवार, अभी ईश्वरीय परिवार। बाबा ने आज मुरली में दोनों याद किए, देवी संबंध और अभी वर्तमान हमारे ब्राह्मण संबंध है संगम युग में, और वो कर्म बंधन है, कलयुग वाले कर्म बंधन है, तो वो तो दुख ही देते हैं। अभी ब्राह्मण संबंध में भी हमारे हिसाब किताब है, क्योंकि हम 84 जन्मों में साथ चलने वाली आत्माएं, सतयुग से 84 जन्मों से हम आ रहे हैं, तो इसके कारण कोई कोई आत्माओं से हमारे संस्कारों का टकराव होता है। हम सब के संस्कार अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, तो जैसा मैं सोचती हूँ दूसरा व्यक्ति भी वैसा हो जाए वो कोई जरूरी नहीं है, तो हम उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे चलते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं ये। तो आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, चाहे कोई कितना भी टकराव में आने की कोशिश करे, जानबूझ के भी कई करते हैं, वैसे तो नहीं मिलते तो ऐसे भी होता है, नेचुरल भी होता है, लेकिन कई बार लोग जानबूझ करके भी टकराव में आने की कोशिश करते हैं। जैसे बाबा ने कहा कोई भले आपकी इंसल्ट कर दे, कोई आपको गाली दे, तो आप क्या बन जाओ, जिसको वरदान याद होगा वो बताएगा बाबा का शब्द क्या था, आप क्या बन जाओ, सेंट बन जाओ, संत बन जाओ। तो संत का स्वभाव क्या होता है, कोई कुछ भी कहता रहे वो तो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी ये बातें तो रोज ही आती हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, हाँ किसी दिन कोई होता है ऐसा, चाहे लौकिक संबंध में रहते हैं चाहे अलौकिक संबंध में रहते हैं, लेकिन उनको समझ के, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट अपना है, हमारा पार्ट अपना है, तो बाबा कहता है कि साक्षी होकर के उनके पार्ट को देखो, जो उसका वो पार्ट है वो आत्मा बजा रही है, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, मेरा फर्ज है वो आत्मा कैसा भी पार्ट बजा रही है लेकिन मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, रहम की भावना रखनी है और देने की भावना रखनी है। अगर मैं अपेक्षा रखूंगी, दिक्कत कहाँ आती है, अपेक्षा रखना माना इसको कैसा होना चाहिए। अज्ञानियों के लिए तो हम नहीं रखते अपेक्षा, अज्ञानियों को जो हम संपर्क में आते हैं ना, तो अज्ञानी तो वो कैसे भी बोले हमारे बारे में या हमारी संस्था के बारे में, हम बहुत आराम से सहन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है इनकी हमें सेवा करनी है, तो शुभ भावना भी रखेंगे और ही प्यार से बोलेंगे, वो जोर जोर से बोलेंगे तो भी हम प्यार से बोलेंगे, लेकिन ज्ञानी आत्माओं के साथ हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अरे ये इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, इनसे तो हम नए हैं, ये फिर भी गुस्से में बात करते हैं, देखो कैसे चलते हैं, ये कैसे बोलते हैं, फिर क्या होता है, डिस्टर्ब, व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, क्यों क्या कैसे नहीं। बाबा कहता है गए और उस आत्मा से हम कभी भी किसी की कमी कमजोरी को, पुरुषार्थी है ना, भले 10 साल के हैं, हम अगर लास्ट में आकर के अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये तो अच्छा है ना, लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट, आप गैलप कैसे करोगे, आपको कम समय में ज्यादा पुरुषार्थ करना है, और वो पुराने हैं फिर भी गलती कर रहे हैं तो पीछे हैं, बाबा कहेगा फिर वो जैसे नंबर वार में आ जाते हैं। तो भी किसी के भी पार्ट को देखते हुए मुझे क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, इवन महारथी भी है ना, ये तो चलो हमारी आपस की बात है, पर महारथियों को जो समर्पित हैं, जो बड़े बड़े सेंटर चलाने वाले हैं, जोन चलाने वाले हैं, मानो उनकी भी कोई बात हमने देख ली, तो अभी संपूर्ण संपन्न तो कोई भी नहीं बना है ना, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया क्या, तो आपको किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, बाबा को। बाबा ने कभी कहा फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, इसको देख लो उसको देख लो, हाँ किसको फॉलो करना है, हमेशा बाबा को। और बाबा को दादियों ने फॉलो किया तो फिर भले हम दादियों को भी देखें, जो हमारी मुख्य दादियां रही उनको हम देखें, तो कभी भी हम किसी के पार्ट से असंतुष्ट नहीं होंगे, और उस आत्मा का कितना भी हिसाब किताब है हमारे साथ ना, होते तो है ना हिसाब किताब, कोई आत्मा विघन रूप बनती है तो फिर हमेशा के लिए ही वो, तो बाबा कहते हैं ऐसे 5% की छुट्टी है आपको, 95% तो सबका स्नेह सहयोग मिलता है, लेकिन जो हमारे नजदीक वाले होते हैं ना उसमें कोई होते हैं, 100 में से 5 लोग ऐसे होते हैं, ज्यादा तो बहुत संबंध नहीं होते ब्राह्मणों के, लंबा चौड़ा हम अब दुनिया में अपना विस्तार नहीं करते हैं, समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो सदा ही हमसे असंतुष्ट रहते हैं, चाहे हम उनको कितना भी संतुष्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका अपना ही सोचने का तरीका होता है, हम अच्छा भी करेंगे ना तो भी उनको बुरा ही लगेगा, होते हैं ऐसे भी लोग, आप कितना भी अच्छा कर लो तो भी। तो फिर बाबा ने कहा कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सबको संतुष्ट कर पाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना है, आप जैसे भी हो मैं आपसे संतुष्ट हूं, मुझे ये समझ कर चलना है कि इनका स्वभाव ऐसा है और मुझे उनके साथ कैसे चलना है जो टकराव ना हो, इसको हम कहते हैं उनको स्वीकार करो, वो जो हैं जैसे हैं उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरों को हम नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल पाता कईयों को, तो फिर ना शिव बाबा भी, बाबा ने कहा ना, बाबा रोज समझाता रहता है, लास्ट में बाबा क्या कहेगा, लो आप नहीं समझे अब तो सजा खाने का टाइम आ गया, पश्चाताप करना पड़ेगा, और बिना फिर सजा खाए जाएंगे नहीं तो पद कम हो जाएगा, तो फिर नहीं समझते हैं तो बाबा भी तो छोड़ देते हैं ना, तो फिर नहीं समझते हैं तो वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदल लेना है, जिसको बाबा कहता है स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाने वाला है। फिर संबंधों की प्राप्ति बाबा से कितनी है, हमें और संबंधों में जाने की जरूरत नहीं, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव बाबा कराता है, दुनिया में तो फिर भी लोगों को कोई संबंध कम ज्यादा होता है ना, किसी को माँ बाप नहीं, किसी को भाई नहीं, या किसी के हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया, किसी की वाइफ ने शरीर छोड़ दिया, माना संबंध मिले हैं लेकिन समय अनुसार वो संबंधों में फर्क भी आ जाता है, संबंध छोड़ के चले जाते हैं मानो, लेकिन बाबा तो हमारा अविनाशी साथी है, आज अगर वो हमारा पिता है तो हमारा फ्रेंड भी है, बाबा बहुरूपी है ना, बाबा कहते हैं आपने दिल से मुझे याद किया जिस भी संबंध से, कितना समय लगता है बाबा को हाजिर होने में, है ना, और दुनिया में जो संबंध है वो हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं, और जब सचमुच हमें समय पर उनकी जरूरत होती है पता चलता है वो है ही नहीं, जो दूसरे होते हैं वो अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं, है ना, आज का टाइम ऐसा होता है ना, अपना बेटा होगा विदेश में बैठा है, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, अब उनको जरूरत है तो विदेश से आएगा, वो कौन करेगा, जो पड़ोसी हैं आपके, है ना, तो इसीलिए ये सांसारिक संबंध हमें सदा काल के लिए नहीं निभा सकते, लेकिन बाबा हमें कहाँ भी किसी भी समय जहाँ आवश्यकता है, बस बाबा को हमने याद किया और बाबा हमारे लिए हाजिर है, तो संबंधों से जो बाबा से हमें प्राप्ति है, जब भी कोई ऐसी असंतुष्टि की बात आती है, हम बाबा को उस संबंध से याद करें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म प्राप्तियां दुनिया में है, नाम मान शान। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो और शान भी होनी चाहिए। तो नाम की कमी है आपको या कहेंगे थोड़ों का नाम होता है, बाकी तो सब गुप्त रहते हैं। तो बाबा कहता है कि नाम, बाबा ने खुद आप बच्चों को इतना नाम वाला बनाया है। कैसे नाम मिला है? जो ब्राह्मण है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कलयुग अंत के समय तक भी इतने ऊंचे माने जाते हैं। वो नामधारी ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण कौन है? हम बाबा के बच्चे। लेकिन अब तक भी उनका नाम कितना ऊंचा है उन ब्राह्मणों का, कि कोई भी शुभ कार्य कराते हैं तो ब्राह्मणों के बिना नहीं होता है। और अपने नाम से ही, ब्राह्मण नाम से ही वो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अपनी कमाई वो कर रहे हैं। और यहाँ पर स्वयं भगवान आपका नाम लेता है। कौन जपता है आपका नाम? दुनिया में लोग भगवान का नाम जपते हैं। भक्त किसका नाम जपते हैं? और शिव बाबा हम बच्चों के नाम की माला को जपते हैं ना। इस पर एक कहानी आती है कि एक बार नारद जी के लिए प्रसिद्ध है ना, वो इधर से उधर इसके उसके पास चक्कर लगाते रहते। तो वो विष्णु जी के पास गए तो देखा विष्णु जी एक डायरी देख रहे हैं। तो पूछा भगवान क्या देख रहे हो? तो उन्होंने उसको दे दिया। तो देखा नाम लिखे हुए थे उन भक्तों के जो भगवान को ही याद करते हैं, और उनमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम था और सबसे नीचे हनुमान जी का नाम। तो बड़े खुश हो गए, लो मेरा नाम नंबर वन में है, मैं भगवान को कितना याद करता हूँ। तो फिर वो तो जैसे कहा ना झरमुई झगमुई वाले देवता, देवता माना ऋषि हैं, तो तुरंत पहुंच गए हनुमान जी के पास। देखा मेरा नाम सबसे ऊपर और आपका नाम सबसे नीचे, माना इतनी खुशी खुशी सुनाया। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं भक्ति में, आप तो क्या है, मतलब अच्छे से उन्होंने उनको महिमा की और खुश हो गए। फिर दूसरे दिन पहुंचे विष्णु जी के पास, फिर देखा एक डायरी उनके हाथ में, छोटी सी है इस आज के दिन जो डायरी है। फिर पूछा भगवान क्या देख रहे हो आप? बोला तुम देख लो। फिर देखा कि उसमें नाम है उनके जिनको भगवान याद करते हैं। पहले दिन था जो भक्त याद करते हैं, और उसमें सबसे ऊपर नाम हनुमान जी का और सबसे नीचे नारद जी का। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, आप वो बच्चे हो जो भगवान के दिल में हो। जैसे हनुमान जी के दिल में दिखाते हैं ना, कि उन्होंने अपना पूरा सीना खोल के दिखा दिया कि मेरे दिल में राम बसा है। तो बच्चे मेरे दिल में बसे हुए हैं, तो हम वो बच्चे हैं जिनका नाम भगवान सिमरन करता है और दुनिया उसके नाम का सिमरन करती है। तो नाम की तो कमी नहीं है, इस नाम को, बेहद के नाम को याद करो, हद के नाम को नहीं। कैसे याद? हद के नाम के लिए सोचते हैं मेरा नाम तो कोई बात में लेते ही नहीं है, मेरे को हमेशा पीछे ही रखा जाता है ना। और हम काम करते हैं, नाम तो दूसरे का हो जाता है, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, स्टेज पे कौन जा रहे हैं? ऐसे ऐसे कईयों को चलता है ना, जो बहुत बाबा की सेवा स्थूल सेवाओं में जो रहते हैं खास करके, कई बार उनके मन में आ जाता है बहन जी तो पूछती ही नहीं है, हमारा नाम तो कभी लेती ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं जब ऐसा होता है मानो, तो कौन से नाम को याद करो, कौन से नाम को याद करो, बाबा ने जो हमें नाम दिया है। और फिर बाबा कहते हैं अच्छा चलो आपका नाम होना चाहिए, वो राइट है, पर नहीं होता है। कई बार क्या होता है, किन्हीं आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है। अब हमारे अंदर वो योग्यता है ना, और उस सेवा में हमारा नाम आना चाहिए, लेकिन वो जानबूझ करके हमें साइड में करते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ हिसाब किताब है। और किसको ले आते हैं सामने? अब ऑप्शंस तो बहुत होते हैं ना, ये करे या ये करे, कोई भी करे। तो हम तो हो गए साइड में, तो बाबा कहते हैं आप राइट हो, आपका होना चाहिए, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गुप्त रह गए इस किसी कारण से, तो बाबा के दिल में पहले आपका नाम है और विजय माला में भी पहले आपका नाम होगा। तो ये बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहे, 95 में बाबा की मुरली चली थी, उसमें आप पढ़ सकते हो, बाबा ने ये बात बहुत क्लियर कही। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है तो फिर हद के नाम के पीछे भी हम क्यों जाएं? जो सहज मिल रहा है ठीक है, हम सेवा करते हैं और उस अनुसार जो भी नाम होता ही है, जो भी सेवा करता है उसकी महिमा भी होती है, उसका नाम भी होता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो भी हमें असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। बाबा जो हमें नाम दे रहा है उसे हमें याद करना है। फिर मान की बात, तो जो स्वमान बाबा ने हमें दिए, बाबा ने तो हमें अपने से भी आगे रखा है। बाबा कहता है बालक सो मालिक हो, है ना। बाबा रोज हमें याद प्यार देते हैं, खुद भगवान हमें इतना सम्मान देता है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और बाबा कहता है मेरे से डबल पूज्य बनते हो आप, मेरी तो सिंगल रूप में ही पूजा होती है, और मंदिरों में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगत, कितनी श्रद्धा और प्यार से सेवा करते हैं, तो कितना ऊंचा मान मिला हुआ है। पूरे कल्प सतयुग त्रेता तो है ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी जड़ मूर्तियों को भी इतने मान से देखते हैं, पूजनीय मानते हैं, तो जिसको मान देते हैं उसे ही पूजनीय मानते हैं ना। और फिर जो वर्तमान में बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं स्वमान के, वो किसी भी राजनेता के, किसी भी अभिनेता के, किसी भी धर्म नेता के नहीं हो सकते, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा VIP हो। इसलिए बाबा कहता है, बाबा के डिक्शनरी में, बाबा की हु इज हु की जो डिक्शनरी है, उसके VIP कौन है? कौन है? हम बच्चे हैं। तो इतना मान भगवान के द्वारा हमें मिला है, वो भूल जाते हैं, इसने पूछा नहीं मेरे को, तो चाहिए चाहिए में चले जाते हैं, इसने मुझे मान नहीं दिया, तो हम मान देने वाले दाता हैं या लेने वाले दाता हैं? लेने वाले या देने वाले? देने वाले। हम देवता बनने वाली आत्माएं ना, तो हमें पहले सबको मान देना, और ये नियम है, आप मान देंगे तो आपको अपने आप सम्मान मिलेगा, और नहीं देंगे, एक तो स्वमान में रहना, इसकी दो विधि बाबा ने बताई, स्वमान में रहना और सम्मान देना, अपने आप हमें वो मान की प्राप्ति कराता है, और नहीं तो हद के मान के पीछे नहीं। जो शिव बाबा ने हमें इतना ऊंचा, इतने ऊंचे स्वमान और इतने टाइटल हैं कि हम रोज याद करें तो भी नहीं कर पाएंगे। सारे टाइटल रोज याद कर सकते हैं? कौन कौन से टाइटल दिए हुए हैं बाबा ने, जो स्वमान दिए हुए हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। एक एक जना बोलो, एक साथ बोलते तो पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। मैं विजयी आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ, मास्टर गॉड। हाँ, मास्टर भगवान है, बराबर, भगवान के भी मालिक है। हाँ, इससे बड़ा और क्या टाइटल होगा, है ना। मास्टर भाग्य विधाता है। हाँ? बाबा के दिल तख्त नशीन है, नूरे रतन है, और विघ्न विनाशक है। हाँ, वो तो बताया, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व सेवाधारी, विश्व के आधार मूरत, विश्व के उधार मूरत, ब्राह्मण कुल भूषण। तो ये सब कितने आप इनको याद करोगे, इतना खुशी और नशे में अपने आप आ जाएंगे कि भगवान ने हमें क्या बना दिया, कभी सपने में भी सोचा था? तो इतना ऊंचा, कई बार लोग सोचते हैं भगवान इतना ऊंचा ऊंचा बोलता है, हम तो है नहीं, साधारण सी माताएं घर में रहने वाली, हाँ, हम हो सकते इतने ऊंचे, क्या समझते हैं या नहीं शिव शक्ति, हाँ? या घर में रहने वाली माता है, जगत माता है, हाँ? जगदम्बा बनाए ना, जगत की अम्बा, जगत की माँ। तो फिर हम इतने ऊंच और श्रेष्ठ हैं, बाबा ने इतना हमें बनाया है, वही हमें स्मृति में रखना है। और शान भी बाबा कहता है, दुनिया में लोग सोचते हैं थोड़ी तो शान होनी चाहिए, माना लोग देखें कि हम क्या हैं, तो कौन सी शान बाबा ने दी हमें। बाबा कहता है दुनिया में राज तख्त पर, माना राजाई पद, ये सबसे बड़ी शान है। तो आप तो वर्तमान में डबल तख्त के अधिकारी हो। कौन सा डबल तख्त मिला हुआ है? अकाल तख्त और शिव बाबा का दिल तख्त नशीन है, जो भगवान का दिल तख्त किसी को भी नहीं, और वो भविष्य में हमें राज्य तख्त नशीन बनाने ही वाला है। पर शान का मतलब ये नहीं कि हम अभिमान में आ जाएं। कई कई जो हैं वो फिर अभिमान में आ जाते हैं। अभिमान में आने की निशानी क्या है? वो जरा भी किसी की थोड़ी सी भी बात सुन नहीं सकता, तुरंत उसे अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो अगर किसी की भी कोई बात, किसी ने मेरे बारे में जरा भी कुछ कहा, कई बार हमारे अंदर जो कमी है वो दूसरे को नजर आ रही है। बाबा कहते हैं ना, हमारी नजदीक की नजर कमजोर होती है, दूर की नजर तेज होती है। तो दूसरों की कमियां तो हम पकड़ते हैं, लेकिन अपनी कमियां ध्यान नहीं देते, दूसरा हमें ध्यान पे खिंचवाने लगता है, तो हम नहीं सुन सकते। अगर सूक्ष्म भी अहम है मेरे अंदर, तो हमें जरा भी वो अच्छा नहीं लगेगा और हम तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे। तो ये हमें देखना है कि कहां भी अगर देही अभिमानी है तो बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी, हम तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, आपने मेरे ध्यान पर दिया और ही थैंक्स, क्योंकि हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, अपनी कमियां निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और मेरा ध्यान इस पर नहीं था, आपने ध्यान खिंचवाया, अच्छा है, अब हम इस पर पुरुषार्थ करके अपने आप को और जल्दी जल्दी संपन्न बनाएंगे, और जल्दी हम तीव्र पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे। तो वो उनका थैंक्स मानेंगे जो देही अभिमानी होंगे, और जो देही अभिमानी माना अभिमान में होंगे, तो ये फर्क है। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्टता की निशानी है कि वो स्वयं से, बाबा से, ड्रामा से सबसे संतुष्ट होंगे। स्वयं से संतुष्ट होना माना स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट। खुद के पुरुषार्थ से असंतुष्ट हो जाते हैं, अपने संस्कारों से असंतुष्ट हो जाते हैं। तो जो रावण के संस्कार हैं, वो तो मेरे संस्कार हैं ही नहीं ना अभी। अभी हमारे संस्कार कौन से हैं? जो बाबा के ईश्वरीय संस्कार हैं, वो हमारे संस्कार हैं। उन संस्कारों में जब चले जाते हैं तब असंतुष्ट होते हैं। मेरे को गुस्सा आना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आ गया, मैंने ये सब बोल दिया, मैंने तो असंतुष्ट हो गए ना अपने आप से। कोई भी ऐसी कमी अपनी जो है, कोई भी विकार के वश जो हमारा संस्कार काम कर जाता है, उससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो वो बाबा ने आज भी कहा, चार्ट रखो, रोज अपनी चेकिंग करो। अगर हम रोज चेकिंग करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप हमारे को, हमारे अपनी हिम्मत से बाबा की मदद मिलेगी, और हम बहुत जल्दी ऐसे संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे। और कोई भी आलस्य, अलबेलापन होता है ना, हम सोचते तो बहुत ऊंचा ऊंचा है, अमृत वेला ऐसा करेंगे, और जो भी माना सारे दिन में भी हम ऐसे ऐसे स्मृति में रहेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जब करने को आता है तो आज सोचा था अमृत वेला बहुत पावरफुल करेंगे, सारे टाइम झुटके ही लगाते रहे, तो फिर असंतुष्ट हो जाएंगे, या तो उठे ही नहीं, अलार्म बजा बंद करके सोए, सीधा 5 बजे आंख खुली, सोचते हैं 5 मिनट में उठ जाएंगे, फिर 5 मिनट कब पूरे होते हैं, 5 बजे, तो असंतुष्ट हो गए सारा दिन, अरे आज तो मेरा अमृत मिला। तो ऐसे असंतुष्ट नहीं होना, कोई बात नहीं, जो हो गया सो बाबा कहते हैं बहुत पश्चाताप मत करो किसी भी पुरुषार्थ की बात को लेकर, लेकिन आगे के लिए अब हम और ध्यान देंगे, दृढ़ संकल्प से हम परिवर्तन लाएंगे। दृढ़ संकल्प माना करना ही है, दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। तो स्वयं से असंतुष्ट नहीं, फिर बाप से, बाबा से असंतुष्ट हो जाते हैं, ये भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ही ऐसा बनाया, और बनाया भी क्या, कल्प कल्प यही चलने वाला है अभी। बाबा मेरा पार्ट ऐसा क्यों दिया तूने, इतने विघ्न मेरे को ही आने हैं क्या, विघ्न क्यों नहीं खत्म करते हो। तो दुनिया में भक्त जैसे भगवान से असंतुष्ट होते हैं ना, क्योंकि भगवान को ही दोष देते हैं सारी बात का, जो कुछ भी उनकी जिंदगी में चल रहा है कौन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है, भगवान। तो हम भी थोड़ा भक्त वाले संस्कार बीच बीच में ही मर्ज कर लेते हैं, बाबा से असंतुष्ट होते हैं ना, अपने आप को चेक कर लो कभी कभी, बाबा इतनी देर से क्यों ज्ञान मिलाया आपने, पहले क्यों नहीं ज्ञान मिला मुझे, क्या कहेंगे, राइट है। बाबा ने तो ड्रामा में सबके लिए मार्जिन रखी है, चाहे लास्ट में आए हैं चाहे पहले आए हैं, आप भी फर्स्ट आ सकते हो, है ना। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो लास्ट में आने वाले हैं वो फर्स्ट नहीं आ सकते। तो इसीलिए कभी भी ड्रामा पर भी दोष नहीं रखना है कि ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, या कोई व्यक्ति पर भी दोष नहीं रखना है कि ये व्यक्ति का स्वभाव संस्कार ही ऐसा है। बाबा कहता है वो प्रसन्न रहेंगे जो निस्वार्थ और निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले हैं, जो किसी पर भी दोष नहीं रखते, यहां तक कि प्रकृति पर भी नहीं, कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है इसलिए प्रकृति का असर हमारे ऊपर आ जाता है, या मेरे शरीर का हिसाब किताब ही ऐसा है मैं क्या करूं, या जो भी है ना, इस आत्मा का, जैसे कहा इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब, ये बार बार ही मेरा सामना करती रहती है, मेरा कर्म भोग ही ऐसा है मैं क्या करूं, बार बार ये कर्म भोग मेरे सामने आता रहता है, तो ये सब असंतुष्टता की बातें हैं। इसकी बजाय क्या समझना है, क्या याद करना है, नहीं, जो प्राप्तियां हुई, बताए ना संतुष्टता का आधार क्या है, जो बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई हैं, जो जब भी कोई अप्राप्ति से मन असंतुष्ट होने लगे तुरंत अपने मन को प्राप्ति में ले जाओ, बाबा ने क्या दिया, क्या ये सब कुछ मुझे मिला था पहले, इतना वंडरफुल ज्ञान, हमारा ज्ञान क्या है किसी शास्त्रों में, और ये सारा ज्ञान हमें सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला, जीवन मुक्ति का अनुभव, इस कलयुग में रहते हुए जीवन मुक्ति का अनुभव हमें ज्ञान से ही होता है, और योग से कितना शक्तियों की प्राप्ति है, कितना गुण, दिव्य गुणों से संपन्न बाबा हमें बना रहा है ना, और जो अविनाशी संबंध, अविनाशी संपत्ति के हम अधिकारी बने हैं, दुनिया में कोई हमारे जैसा है, तो बाबा कहता है उन प्राप्तियों को याद करते हुए अपनी खुशी और उस नशे को अनुभव करो। तो ये जो असंतुष्टता की छोटी मोटी बातें आती हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वही हम हद में चले जाते हैं। फिर आने वाले सतयुग में हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है, तन मन धन संबंध सब भाग्य पूरे होंगे संपूर्ण, तन का सुख निरोगी का है वो याद करो कितना, ये तो थोड़े समय का है, बाबा कहता है ना धीरज धर मनवा धीरज धर, तो जो भी कुछ ऊपर नीचे है कितने दिन है, अब हमारे सुख के दिन कितने आने वाले हैं, तो इसीलिए बाबा कहता है दोनों याद करो, अपने भविष्य स्वरूप को याद करो, हम क्या बनने वाले हैं, कितना श्रेष्ठ हम बनने वाले हैं ना, इतना हमारा निरोगी तन लंबी आयु हम जिएंगे, सदा ही वहां पर हम प्रसन्न हैं कि आज हमारे देवताओं की जड़ मूर्तियों को देख करके ही लोग खुश हो जाते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, क्यों दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में लोग, क्यों दर्शन करने जाते हैं, क्या मिलता है उनको, तो यहाँ चैतन्य में होंगे तब तो देंगे, तब तो जड़ मूर्तियां देंगी, क्योंकि चरित्र से ही चित्र बना है, हमारे वो चित्र किससे बने, आज हमारा वो चरित्र ऐसा रहा जो उसका यादगार वो बना है, तो क्या मेरा चेहरा ऐसा है, बाबा कहते हैं जो संतुष्ट मणियां होंगी ना उनकी झलक फलक ही अलग होगी, जो असंतुष्ट होगा उसका चेहरा और जो संतुष्ट होगा उसका चेहरा, संतुष्टता और प्रसन्नता का कनेक्शन है, जो संतुष्ट होगा वो प्रसन्न जरूर होगा, प्रसन्न नहीं है तो प्रश्नचित है, और जो प्रश्न जो प्रसन्न है वो सदा ही प्रश्नों से पार है। तो वो चेहरा कैसा होगा जो प्रसन्न है? वो सबको प्रसन्न करने वाला होगा। हाँ, उसके उसको दर्शन मात्र से ही, माना हमारे बाबा कहते हैं जो हर्षित मूर्त होते हैं वो आकर्षित मूर्त होते हैं। कोई भी दुख वाला व्यक्ति दूसरे में दुख की लहर ही पैदा करेगा, और दूसरों को खुशी कौन दे सकता है? जो खुद खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है वो याद करो जो बाबा ने हमें वर्तमान समय बनाया है, दिया है, है ना। और धन तो धन कितना किचार धन होगा सतयुग में। वो पद्मा पदम पति हम होंगे जो आज के कितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, कोई बाबा कहता है आपकी गरीब प्रजा के बराबर भी धन नहीं है उनके पास, जो आज के बड़े बड़े अरबपति हैं उनके पास। तो सोचो कितने धनवान हम बनने वाले हैं। फिर संबंध भी कितने श्रेष्ठ दैवी संबंध, जो निस्वार्थ स्नेह देने वाले। आजकल के संबंध तो स्वार्थ वाले हैं। आपका स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक प्यार है, स्वार्थ खत्म तो प्यार भी खत्म। कलयुग स्वार्थ की दुनिया है ना, तो सतयुग में ऐसे संबंध नहीं होंगे। सदा ही स्नेह देने वाले, निस्वार्थ स्नेह देने वाले हमारे संबंध हैं। तो उनको याद करना है जो प्राप्तियां बाबा ने हमें बेहद की कराई हुई है। तो सदा ही हम संतुष्ट रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। ओम शांति।
प्रभु मिलन की।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता दीदी, बहुत ही अच्छे से आपने संतुष्टता की प्रॉपर्टी को कैसे सहेज के रखना बता दिया, और आपका प्रैक्टिकल लाइफ ही बताता है, चेहरा बताता है, कर्म बताते हैं कि आप सच में संतुष्टता की धनी हैं। और उसी बात को, क्योंकि जो धारण करते हैं, धारणा से बातों को बताते हैं, वो बातों का असर भी होता है। सबको बहुत अच्छा लगा ना, तो हर बात में संतुष्ट रहने का आज दृढ़ संकल्प ले लेना।